प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज हमारे बीच पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने मित्रों को भी इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अवश्य प्रोत्साहित करें और आत्मिक लाभ उठाएं। तो मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों यहेजकेल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे जाने से पहले प्रार्थना करें और हम परमेश्वर से सहायता मांगें ताकि परमेश्वर के वचन को हम समझ सकें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र और मधुर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक और लाभकारी है। आज जब हम वचन को सुनते और सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन को सुने तो आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हमसे बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी विनती है प्रभु कि ये वचन हमें सुधार सके, हमें बुराइयों का आगाह दे और हमें छुटकारा दे ताकि हम आपकी ओर फिरने पाए। विनती करते हैं हर एक श्रोता भाई बहनों के लिए आप उनकी सहायता करें जो बीमार अवस्था में है, निराश और परेशान है, चिंतित और तनाव में है, कर्ज के दबाव में है, निसंतान है, बीमारी से पीड़ित हैं, नौकरी की तलाश में हैं। पिताजी, आप उन पर अपनी कृपा दृष्टि करें, उनकी सहायता करें, उन्हें शांति और आनंद दें। आज इस घड़ी हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आशीष करें जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आज हम आगे बढ़ते हैं और यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय उसके 32 पद से देखते हैं। लिखा हुआ है यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय उसके 32 और 33 पद में, तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं परंतु उन पर चलते नहीं। इसलिए जब यह बात घटेगी और वह निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता आया था। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि यहेजकेल को परमेश्वर ने पुनः नियुक्ति दी और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहेजकेल की भविष्यवाणी के अनुसार यरूशलेम नष्ट हो गया है। अतः हुए जान गए हैं कि यहेजकेल परमेश्वर का ही भविष्यद्वक्ता है। वे जानते हैं कि वह परमेश्वर का वचन ही उन्हें सुनाता है, परंतु वे अब भी उसका पालन नहीं करेंगे। मेरे मित्रों, अविश्वास स्वैच्छिक है, यह इसलिए नहीं कि मनुष्य में समझने की बुद्धि नहीं है। समस्या तो यह है कि मनुष्य पाप का त्याग करना नहीं चाहता है। यहेजकेल के लक्षित जन समूह की भी यही समस्या थी। वे यहेजकेल की बातें सुनने के लिए आकर बैठते तो थे, परंतु उन पर उसकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। आप सोच रहे होंगे कि अब तो वे निश्चय ही परमेश्वर की ओर फिरेंगे, परंतु नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा उनके भ्रम में ना पड़ना। यह सच है कि वे आकर तेरी बातें सुनते हैं परंतु तेरी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। वे वचन के पालन करने वाले नहीं हैं। वे तुझसे प्रेम, भविष्य की बातें और भविष्यवाणियां सुनना पसंद करते हैं, परंतु उन पर इसका नाम मात्र का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका जीवन पहले जैसा ही है, वे मुझसे बहुत दूर हैं। मेरे मित्रों, आज हम में से कई लोग भी ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सभाओं में जाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में उसे ग्रहण नहीं करते, उसके अनुसार हम चलना नहीं चाहते। इसका मतलब यही हुआ कि हम परमेश्वर से दूर हैं। यहेजकेल एकमात्र मनुष्य था जिसने कहा था कि यरूशलेम नष्ट किया जाएगा। झूठे भविष्यद्वक्ता तो सब यही कहते थे कि यरूशलेम का कुछ भी नहीं होगा। अब वहां से समाचार आ गया है कि यरूशलेम नष्ट हो गया है। यहेजकेल सच्चा भविष्यद्वक्ता सिद्ध हुआ है। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 33 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 34 से जारी रखेंगे। इसका विषय है इसराइल के झूठे चरवाहे, परमेश्वर का सच्चा चरवाहा। हम देखते हैं कि इसराइल के झूठे चरवाहे, इसराइल के झूठे भविष्यद्वक्ता अब झूठे सिद्ध हो चुके थे, क्योंकि यहेजकेल द्वारा यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी पूरी हुई है। परमेश्वर के पास इन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए भी कुछ कहने को है। आइए हम पढ़ें यहेजकेल के पुस्तक 34 अध्याय उसके 1-2 पद में लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इसराइल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए यहेजकेल कुछ नहीं कह रहा है, परमेश्वर ही सारी बातों को कह रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी सेवा कार्य के विकास के पक्ष में नहीं हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे आर्थिक सहयोग के योग्य अद्भुत एवं उत्तम मसीही सेवाएं नहीं हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि वे केवल प्रचार प्रसार संस्थाएं ही न हों, वे मनुष्य को परमेश्वर का वचन भी सुनाएं। और मेरे विचार में किसी भी संस्था को कुछ दिए बिना किसी से दान का निवेदन करने का अधिकार नहीं है। हमें उन्हीं सेवाओं को सहयोग देना चाहिए जिनसे हमने आशीषें पाई हैं। सेवा संस्थाओं का उत्तरदायित्व पैसा मांगना नहीं है, परमेश्वर का वचन सुनाना और भेड़ों को भोजन देना है। और मैं यह भी सोचता हूं कि आज भी किसी सेवा को आंकने का यही एक मानक है। यहेजकेल के पुस्तक 34 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, तुमने बीमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घावों को बांधा, न निकाली हुई को लौटा लाए, न खोए हुए को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। मेरे मित्रों, हम सबको आवश्यकता है और हमारी गहरी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला केवल परमेश्वर का वचन है। यदि प्रचारक परमेश्वर का वचन नहीं सुना रहा है तो वह मनुष्यों की सेवा नहीं कर रहा है। आवश्यक है कि परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। प्रचारकों द्वारा मसीही जनों को सुनाए जाने वाले ये उपदेश आज काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग घरेलू आराधना भी करते हैं, परंतु वे परमेश्वर के वचन को नहीं गीतों को महत्व देते हैं। परंतु हमें चाहिए कि हम वचन उन्हें सुनाएं। यहेजकेल के पुस्तक 34 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। ध्यान दीजिए, कहने का अर्थ यह है कि आराधनाओं में यदि पोषण न दिया जाए तो सदस्य तीतर बीतर हो जाते हैं, वे भोजन का स्थान ढूंढ लेते हैं। उनकी आलोचना करना आवश्यक नहीं, क्योंकि भेड़ों को भोजन की आवश्यकता है। परमेश्वर की संतान का स्वभाव भी ऐसा ही है, वह परमेश्वर का वचन सुनना चाहता है। इसलिए एक चरवाहे को चाहिए कि वह उन्हें वचन सुनाए। यहेजकेल की पुस्तक 34 अध्याय उसके 7 से 10 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपना ही पेट भरा, इस कारण हे चरवाहों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा और उनको फिर उन्हें चराने न दूंगा, वे फिर अपना पेट भरने न पाएंगे। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इन झूठे चरवाहों से लेखा लेगा। वह कहता है मैं उनके विरुद्ध हूं, मैं उनसे वैसे ही विमुख हूं जैसे एक पापी या पाप से विमुख रहता हूं। मैं उनसे लेखा लूंगा, क्योंकि परमेश्वर प्रत्येक सेवक से जो सही रीति से अपने लोगों को भोजन नहीं कराता है, वचन नहीं सुनाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उनसे लेखा लेगा। हम आगे देखते हैं परमेश्वर का सच्चा चरवाहा। यहेजकेल 34 अध्याय के 11 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का चरवाहा यीशु है, जिसने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूं। यहेजकेल ने कहा कि मसीह आएगा और मेरे प्रियो वह फिर से आने वाला है, क्योंकि उसने इस पृथ्वी की निगहवाणी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं की है, उसे इसकी देखभाल करनी है। अब भावी दर्शन है, ये वचन इसराइल के लिए शांति दिलाने वाली बातें हैं, उन्हें उसकी बात पर ध्यान देना है। वह एक अच्छा चरवाहा है, वह एक महान चरवाहा है, वह अपनी भेड़ों का प्रधान चरवाहा है। वह कहता है मैं अपनी भेड़ों को खोज लूंगा। भजन संहिता 23 उसके 1 पद में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। मेरे प्रियो, इस अध्याय के शेष भाग में सबसे अधिक प्रभावशाली बात हमारे लिए जो है वह है मैं आप सुधी लूंगा। पद 11 से 29 तक परमेश्वर का यह वचन 18 बार आया है, मैं मनुष्यों द्वारा उनके कर्मों को सुनकर ऊब जाता हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं आप सुधी लूंगा, तो यह उसका अनुग्रह है। हमारे अच्छे चरवाहे ने कहा मती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 28 पद में हमारा चरवाहा प्रभु यीशु कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी। मेरे महान चरवाहे ने भी यही कहा है। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य बातें हैं कि हम उनके पास आए और विश्राम पाए, हम उनके पास आए और अनंत जीवन को पाए। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें उनके पास आना है। यहेजकेल 34 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। अच्छा चरवाहा 2000 वर्ष पूर्व आया था, वह आज भी कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 27 पद में, क्या आप जानते हैं कि उसकी भेड़ें उसका शब्द क्यों सुनती हैं? इसके दो कारण हैं। वह उन्हें पुकारता है और वे उसे पहचानती हैं। वे उसकी आवाज पहचानती हैं और उसे जानती भी हैं। हमारे पास कैसा अद्भुत चरवाहा है। मेरे मित्रों, क्या आज आप यीशु को पुकारते हैं? क्या आज आप यीशु को जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो निश्चय ही उद्धार आपके पास है। यहेजकेल 34 अध्याय के 13 पद में लिखा है, मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। यह चरवाहा इसराइल के विषय में बात कर रहा है कि वह उनके लिए भविष्य में क्या करेगा। वे अपने पाप के कारण और झूठे भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करने के कारण बंधुआई में चले गए हैं, परंतु वह कहता है कि मेरा काम उनके साथ अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं उन्हें लौटाकर स्वदेश लाना चाहता हूं। यहेजकेल 34 के 14 और 15 पद में आगे हम पढ़ते हैं, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इसराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगे और इसराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगे। मैं आप ही अपने भेड़ बकरियों का चरवाहा होऊंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि वह उन्हें हरी भरी चरागाहों में चराएगा और जब वे लेट जाएंगे तब वह उन्हें हर एक प्रकार के भय से रक्षा करेगा क्योंकि वे सुरक्षित रहेंगे। यह स्पष्टता भविष्य की बात है। आज इसराइल सुरक्षित नहीं है, परंतु एक समय आएगा कि वे सुरक्षित रहेंगे। यहेजकेल 34 उसके 16 पद में लिखा हुआ है, मैं खोए हुए को ढूंढूंगा और निकाले हुए को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत हैं उन्हें मैं नष्ट करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। उसकी एक भी भेड़ कम हो जाए तो वह उसे तुरंत खोजने के लिए निकल पड़ता है। वह इसराइल के साथ ऐसा ही करेगा, वह कलीसिया के साथ भी ऐसा ही करेगा। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु ने भेड़ों और चरवाहे का दृष्टांत सुनाया था। उसके पास 100 भेड़े थी और एक खो गई थी। उसने क्या किया? क्या वह उसे भूल गया? क्या उसने सोचा कि एक भेड़ भाग गई तो कोई बात नहीं? जी नहीं, उसने यह नहीं कहा कि मैं 99 भेड़ों को तो बचा लाया हूं। उसने कहा, मेरे पास 100 भेड़े थी और मैं पूरी 100 भेड़े ही पूरी करूंगा। मेरे प्रियो, आपका यह सेवक स्वर्ग इसलिए नहीं जाएगा कि वह एक चतुर भेड़ है। भेड़े तो सब मूर्ख होती हैं। मैं स्वर्ग इसलिए जाऊंगा कि मेरा चरवाहा महान है जो कहता है मैं स्वयं सुधी लूंगा। वह बार बार यही कहता है और यही कारण है कि आज वह अपनी भेड़ों को ढूंढ रहा है जो खो गई हैं, जो पाप में अपने जीवन को जी रही हैं, ताकि उन्हें वापस ले आए और उन्हें स्वर्ग में ले जाए। यहेजकेल 34 उसके 20 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर यहोवा उनसे यूं कहता है, देखो मैं आप मोटी और दुबली भेड़ बकरियों के बीच न्याय करूंगा। यह अलग करने का काम परमेश्वर करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में प्रभु यीशु ने गेहूं में जंगली बीज डालने का दृष्टांत सुनाया था। एक किसान ने अपने खेत में गेहूं बोया, परंतु उसके बैरी अर्थात शत्रु ने आकर उसके खेत में जंगली बीज डाल दिए। खेत के सेवकों ने स्वामी से पूछा कि क्या वे जंगली पौधों को निकाल दें। स्वामी ने उत्तर दिया, उन्हें उगने दो, फसल तैयार होने पर मैं उन्हें अलग कर दूंगा। मैं प्रसन्न हूं कि यह अलग करने का काम प्रभु करेगा। कभी कोई मुझसे पूछता है, क्या आप सोचते हैं कि वह विश्वासी है? मुझे कहना पड़ता है, मैं नहीं जानता, यह मेरा काम नहीं है। वह अपनों को पहचानता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं। यहेजकेल 34 उसके 21 से 24 पद में लिखा है, तुम जो सब बीमारों को पांजर और कंधे से यहां तक ढकेलते और सिंह से यहां तक मारते हो कि वे तीतर बीतर हो जाती हैं, इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लुटेंगी, और मैं भेड़ भेड़ के और बकरी बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। मेरे प्रियो, यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि पृथ्वी इसराइल का अनंत धाम होगी और दाऊद अनंत काल तक राज्य करेगा। वह प्रभु यीशु का सहायक शासक होगा। मैं यह भी मानता हूं कि कलीसिया प्रभु यीशु के साथ नए यरूशलेम में होगी। प्रभु यीशु ने कहा है कि वह अपनी कलीसिया को लेने आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 3 पद में उसने प्रतिज्ञा की है कि जहां वह रहेगा हम भी वहीं रहेंगे। जब वह पृथ्वी पर अनंत काल के युग में आएगा तब हम भी आएंगे, परंतु आगंतुक के समान। अतः पृथ्वी पर जमीन ना खरीदें, क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता नहीं होगी, परंतु सुनिश्चित करें कि आप स्वर्ग में भवन निर्माण हेतु पूरी सामग्री भेज रहे हैं। लिखा है कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। मेरे प्रियो, वह कहता है कि इसराइल के साथ उसका प्रयोजन समाप्त नहीं हुआ है। यहेजकेल 34 उसके 25 पद में हम पढ़ते हैं, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा, अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। यह बड़ी रोचक बात है कि प्रजा और देश इसराइल धर्मशास्त्र में एक साथ चलते हैं। जब वे अपने देश में आशीष पाते हैं तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर के साथ उनके संबंध उचित हैं, अर्थात ठीक हैं। यहेजकेल 34 उसके 28 पद में हम पढ़ते हैं, वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे और न वन पशु उन्हें फाड़ खाएंगे, वे निडर रहेंगे और उनको कोई न डराएगा। जी हाँ, वह दिन आएगा जब वे फिर जाति जाति से लूटे न जाएंगे। आज उनकी दशा ऐसी ही है, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं स्वयं उनकी सुधि लूंगा। परमेश्वर ने कहा है तो वह अवश्य ही करेगा भी। मेरे मित्रों, परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरें। वह मेरी और आपकी सुधि लेना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य पाप से छुटकारा पाए, उद्धार को प्राप्त करे और उसके साथ में रहे, परंतु हम मनुष्य उसकी नहीं सुनते हैं। आज मेरे लिए और आपके लिए, प्रत्येक श्रोताओं के लिए एक अवसर है कि हम परमेश्वर के पास आ जाएं, क्योंकि वह हमारा अच्छा चरवाहा है। वह हमें हर एक प्रकार की हानि से, वन पशुओं से, दुख और बीमारी से बचाएगा, यदि हम उसके पास आएंगे, उसकी आवाज को सुनेंगे। मेरे प्रियो, क्या आज हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो निश्चय जाने कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वह हमें अच्छे जगह पर ले जाएगा। जैसा कि इसराइलियों के बारे हम देख रहे हैं कि वे सुनते तो थे परंतु मानते नहीं थे। कई बार ऐसा ही होता है कि हम सुनते हैं परंतु मानते नहीं हैं। आज हमें निर्णय करना है कि हम मानेंगे, हम सही मार्ग पर चलेंगे, अपने जीवन में उन आशीषों को हम आने देंगे। जिस प्रकार से प्रभु कहता है कि भेड़ को बकरियों से वह अलग करेगा, मेरे प्रियो, आइए हम पापमय जीवन को छोड़कर परमेश्वर के पवित्र जीवन को जीना आरंभ करें और इस पृथ्वी पर रहते हुए उसके उन आशीषों को अनुभव करें। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।